19 श्री कृष्ण द्वारा नियत किया हुआ कृष्ण द्वितीया का दिन सुवर्ण के ऋणों से आभूषण लेकर उदित हुआ। शिविर से बाहर आकर मैंने चारों ओर दृष्टि डाली। जैसे वाल्मीकि से दीपक बाहर निकलती है, वैसे ही लौह त्राण पहने हुए सैनिक योद्धा एक के बाद एक झटपट अपने अपने शस्त्र उठाते हुए शिविरों से निरंतर बाहर निकलने लगे। नंदक, निकुंभ, द्रुमसेन, प्रभंगर, रुचिपरवा, ललित, वसुचंद्र, सेनाजीत, सुधनु, भूरिश्रवा, जयरात, रुक्मरथ, सिद्धार्थ, भानुदत्त, गोवासन, शाल्व, जयत्सेन, दमन, शरतचंद्र, शक्रदेव, धृतायुध, विभ्य, वज्रहस्त, सोमदत्त, संयमन आदि सभी अपने अपने पथकों की रचना करने लगे। 240,000 रथदल के सभागार में चुने हुए रथी, अतिरथी और महारथी समाविष्ट हो गए। शिविर सूने हो गए। 700,000 धूमिल, श्वेत, श्याम और ताम्रवर्णी सशक्त घोड़े कंधे से कंधा मिलाकर पर्याय धारण किए पंक्तियों में खड़े हो गए। वलगाएं उछलने लगी। पूंछों की रोमराजे फूल उठी। कानों के अग्रभाग खड़े हो गए। 250,000 हाथियों का काला महासमुद्र पीठ पर अंबारियों के गोल पटल लिए हलचल करने लगा। फड़फड़ाने वाले काले कानों की लहरें उस पर उभरने लगी। बीच में ही जैसे देव मत्स्यों के झुंड के असंख्य मत्स्य जल पृष्ठ पर तैरने लगते हैं, वैसे ही पुष्ट काले सूणे राजहंस की तिरछी ग्रीवा की तरह सुंदर मोड़ लेकर प्रकट होने लगे। 1,200,000 पदाति दल के आधे से अधिक पदाति उनको कुंभ भर भर कर मध्य पिलाने लगे। पत्ती, सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, प्रीतना, चमु, अनाकिनी और अक्षौहिणी आकार ग्रहण करती हुई राजदंडाकृति सैन्य रचना करने लगी। उनकी हलचलों से थरथराते हुए बाण, भाले, त्रिशूल, खड्ग, तोमर आदि के फलों पर से परावर्तित होने वाली किरणें आकाश के अनंत खोखलेपन में छिपे हुए स्वर्ग के साम्राज्य को खोजने लगी। पितामह, गुरुद्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, मामा, दुर्योधन, दुशासन, भगदत्त, विकर्ण, कृतवर्मा, सोमदत्त, सहदेव, केतुमत्त, बिंद, अनुबिंद, शिरस्त्राण धारण कर चतुरंग दल में घूमते हुए सैन्य रचना करने लगे। वह दिन उदित हो रहा था जिसकी जीवन प्रतीक्षा करने में मैंने एक एक क्षण बिताया था, परंतु शिविर के द्वार पर खड़े होकर जीवन का तांडव नृत्य देखने वाले एक तटस्थ प्रेक्षक के अतिरिक्त मैं इस समय कुछ भी नहीं कर सकता था। कर्ण चलते हैं हम, दुर्योधन और अश्वत्थामा मेरा आलिंगन कर भारी पदक्षेप करते हुए अपने शस्त्रास्त्रों से ठसाठस भरे हुए सुसज्जित महारथ पर आरूढ़ हो गए। मेरे 6 पुत्रों ने मेरी चरण धूलि मस्तक से लगाई। अपनी माताओं का, राधा माता का, पिताजी का, सत्यसेन मेघमाला का आशीर्वाद ले लिया है ना? शोण चाचा की समाधि पर सुगंधी पुष्प चढ़ाकर आए हो ना? अपनी पत्नियों के मस्तक अंगूठे के उष्ण रक्त से सौभाग्यान्वित कर दिए हुए हैं ना? इस प्रकार मैंने उनसे अनेक प्रश्न किए। सबके आशीर्वाद प्राप्त कर लिए, आपके चाहिए। कमर में लटका हुआ खड्ग असिकोष में खींचकर उसको तिरछा पकड़कर घुटना टेकता हुआ वृषसेन सिर झुकाकर बोला, जाओ वीर पुत्रों, एक निष्ठा से लड़ो। मैंने उन 6 को दोनों भुजाएं फैलाकर अंक में भर लिया। मेरे पिता ने मुझे यद्यपि मनमाने ढंग से घुमाया फिराया था, परंतु मैं अपने पुत्रों को क्षण भर भी पितृत्व से वंचित नहीं करना चाहता था। उनके कंधे थपथपाकर अंगुली से संकेत करते हुए मैंने कहा, जाओ, कर्ण युद्ध में नहीं है, इस कमी की कोई भी सैनिक अनुभव न करने पाए, और रणांगण पर पैर रखने से पहले दृष्टद्वति के स्वच्छ जल से 5-5 अंजलियों का अर्घदान सूर्यदेव को देना मत भूलना, जाओ। वे शांत चित्त से सेना में समाविष्ट हो गए। रणभेरी, आनक, गोमुख, दुंदुभि, मृदंग, नगाड़े, डिंडिम आदि रणवाद्यों का गगनभेदी सम्मिश्र कोलाहल उठते ही अर्धनिद्रित विहग नीड़ छोड़कर संतरस्त कलकल ध्वनि करते हुए मैनाक पर्वत की ओर उड़ गए। हाथियों की मर्मभेदी सिंघाड़, घोड़ों की प्रेरक हिनहिनाहट, महाराज धृतराष्ट्र का नाम ले लेकर कुरु योद्धाओं द्वारा की गई कर्कश गर्जनाएं, इनमें दृष्टद्वति की चंचल जल लहरियां भी घबराकर और अधिक थरथराने लगी। सैनिक इस प्रकार इकट्ठे हो गए जैसे पारिजात पुष्पों की बौछार पड़ गई हो। काशाय वर्ण का लंबे ध्वजदंड के सिर पर फहराता हुआ कुरुओं का त्रिकोणी राजध्वज पितामह ने अपने रथ पर धारण किया। उनकी फरफराहट उसकी फरफराहट नीले आकाश पर थपेड़ी लगाने लगी। दोनों हाथों के बीच रिक्त स्थान में घुमावदार शंख लेकर सेनापति भीष्म ने कंठ की त्वचा फुलाकर दाढ़ी के केश तानते हुए जोर से फूका। उसका निनाद आसपास के वातावरण में फैल गया। वीरों की बलवान भुजाएं स्फुरित हो उठी। आरूढ़, दोनों हाथ उठाकर उन्होंने धनुष को उठाते हुए आज्ञा दी। पूर्वों की 25 लाख सेना राजदंड का आकार आगे सरकाते हुए राख की पट्टियों का उल्लंघन कर कुरुक्षेत्र के सम्रांगण की ओर ऐसे बढ़ने लगी जैसे वर्षा ऋतु से पूर्व के गरजने वाले मेघ आकाशमंडल में आगे बढ़ते हैं। मैंने असह्य भाव से क्षण भर आँखें बंद कर ली। जिनके लिए मैंने अपने बंधुओं का माता का नाता तोड़ दिया था और कर्तव्य समझकर कुरुओं से संलग्न रहा था, मुझ पर प्राणाधिक प्रेम करने वाले वे वीर योद्धा बिना मेरे अब लड़ने निकल पड़े थे। जिनका मैं संचालन करता, अब उनके पराक्रम को दूर बैठकर केवल सुनना भर था। जीवन भर पीछा करने वाला क्रूर देव यही मुझसे हाथ कैसे मिला लेता। मैंने प्राणों को दांव पर लगाकर जिनके राजदंड को आर्यावर्त में ऐश्वर्यशाली बनाकर घुमाया था, उनका आज ही संकट की घड़ी में मेरे बिना कोई काम नहीं रुक रहा था। व्यक्ति कितना ही श्रेष्ठ, कितना ही त्यागी और कितना ही योजना कुशल क्यों न हो, उसके लिए समाज कभी नहीं रुकता। समाज की अखंड गंगा बहती ही रहेगी। जल के जल बिंदु जल जाएंगे, जो आज हैं वे चले जाएंगे, कल नए आएंगे। गंगा ऐसे ही बहती रहेगी। मैं ही अपने जीवन को इतना मूल्यवान क्यों समझूं? किसी व्यक्ति को यह समझना भी नहीं चाहिए। यही बात कुरुओं की वह विशाल सेना मुझसे कह रही थी। स्थिर भाव से उन संग्रामोत्सुक शूरवीरों की ओर देखते हुए मैं स्वयं को, अपने सुख दुखों को, जीवन की कल्पनाओं को, कुटुंबीजनों को, सभी को भूल गया। जीवन मृत्यु की स्पर्श रेखाएं कितने सहज भाव से कुरुक्षेत्र के आसपास एकत्रित हो गई थी। उन सूरवीरों को एकत्रित देखकर कोई भी यही समझता कि आकाश के असंख्य सितारे भी किसी ने यहाँ लाकर बिखेर दिए हैं। पर्वतों की सटी हुई पंक्तियों जैसे विशाल काय महारथियों को इतनी प्रचंड संख्या में रुथारूढ़ होते हुए हस्तिनापुर के राजभवन ने कब देखे थे। बाहलिक, सिंध, कुलिंद, मद्र, कम्बोज, गांधार, मत्स्य, अवंती, दरद, आनर्त, दशारण, चेदी, द्वारका, काशी, पांचाल, मगध, विदेह, कोसल, अंग, कलिंग, बंग, ऐसा कौन सा देश था जिसका राजध्वज कुरुक्षेत्र की परिक्रमा पर उसे मानवंदना देने नहीं आया था। कितना भाग्यशाली संस्मरणीय दिन कुरुओं की राजनगरी आज देख रही थी। श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख की आकाश के वितान को भेदने वाली ध्वनि सुनते ही मेरी तंद्रा भंग हो गई। अर्जुन का कपिध्वज धारण किए हुए नंदीघोष रथ 15 लक्षों की सेना लेकर सामने से आगे बढ़ा। धूलि के बादल उड़ने लगे, परंतु उसके रथ के नीलवर्ण सारथी श्री कृष्ण हंस रहे थे। 15 लक्ष सेना पांडु महाराज का जयघोष कर रही थी। उसमें अमितौजस, विक्रांत, द्रुपद, कुंतीभोज, वार्धक्षेमी, दंडधर, बृहच्छत्र, दुष्टद्युम्न, सात्यकी, अभिमन्यु, काशीराज, छत्रंजय, चेकितान, विराट, युधामन्यु, शेनजित और युयुद्धान ये महारथी थे। बभ्रु, अदीन, प्रतिविंध्य, पुरुजित, श्रेणीमान, इरामान, शतानिक ये अतिरथी थे। सिंहचंद्र, सुक्षत्र, श्रैव्य, रोचमान, रथसेन, युगंधर, मणिमान, महोजस, मित्रवर्मन, ब्रह्मदेव, तपन, सुपार्श, जनमेजय, सुदामा, सुतेजस, चित्रकेतु, उग्रसेन आदि अनेक राजागण उनके पीछे पीछे आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, युयुधान, दृष्टद्युम्न ये अग्रभाग में थे। सुदर्शन चक्र के आकार की रची हुई उनकी सेना चक्कर लगाती हुई सामने से आगे बढ़ने लगी। राजदंड के आकार की रचना पर खड़े हुए पितामह ने हाथ उठाकर शंख फूंकते हुए चढ़ाई की आज्ञा दी। पांडवों ने भी अपने अपने शंख फूंके। रणवाद्यों के सम्मिश्रित निनाद से भयभीत अश्व हिनहिनाने लगे, हाथी चिंघाड़ने लगे, खड्ग, बाण, भाले, शूल, इनके अगणित फलक चमकने लगे, रथों के चक्र घरघराने लगे, देश देश के राजध्वज फरफराने लगे, स्वर्ण के जंग लगे हुए महाद्वार चरमराने लगे, धूल की घटाओं से आकाश का नीला वितान काला पड़ने लगा। आसपास खड़े वृक्षों के पत्ते तथा तृणपात अंग झटका खाकर थरथरा उठे। वर्षानुवर्ष मन के भाते में सजोए हुए भावना के बाण एक दूसरे को मुक्त हस्त से दान करने के लिए उद्यत दोनों सेनाओं के 40 लक्ष योद्धा आमने सामने आ डटे। योद्धाओं की लहरें उछालते दो महासागर गरजने लगे। शिविर के द्वार पर खड़ा रहना मुझे असह्य होने लगा। मैंने जीवन भर कुरुओं का नेतृत्व किया था, अब पाषाण मूर्तिवत दूर खड़ा रहकर उस संग्राम को कैसे देखूं? सूतपुत्र के रूप में मेरी जीवन भर की घुटन मुझे इतनी असह्य कभी नहीं लगी थी जितने कि सामने के महासंग्राम का देखना असह्य हो गया था। शरीर रूपी लोहे की हालत तप्त हो होकर प्रखर हो गई थी, रक्त कणों की गति तीव्र हो गई थी, खड़ा रहना असंभव था, इसीलिए भीतर जाकर आसन पर बैठ गया। दोनों हाथों से मस्तक कसकर दबाने पर भी रक्त का वेग रुक नहीं रहा था, विचारों की चिंगारियां बंद नहीं हो रही थी। सुदामन शोण का उध्वस्त शिरस्त्राण प्रतिज्ञा का पालन, अर्जुन के प्राण, परंतु आदि पितामह ने उसका बीच में ही वध कर दिया तो मैं वचन भ्रष्ट हो जाऊंगा। खिन्न होकर पैरों की ओर देखा, बहुत दिनों से उन्हें न धोने के कारण जो धूल संचित हो गई थी वह स्पष्ट दिखाई देने लगी, हृदय में, आंखों में, मस्तक में चुभने लगी। बाहर वाद्यों का कोलाहल शिविर के पटल पर टकरा ही रहा था, कानों के रंध्र सुन्न हो गए। चेतना से तो उन्मत्तता अच्छी, ऐसी असहाय जीवन में तो बंदी बना लेने वाली मूर्छा अच्छी। सत्यसेन, मैंने पूरी शक्ति से चिल्लाया। महाराज आज्ञा, बाण की तरह भीतर घुसकर वह क्षण भर में मेरे सामने खड़ा हो गया। जाओ सोमरस का कुंभ भर लाओ। महाराज, सोमरस के सभी घट रिक्त हो चुके हैं, दो बूंद भी सोमरस अवशेष नहीं। वह पूर्ववत शांत खड़ा था। उससे कुछ कहने के लिए मैंने मुंह खोला था कि इतने में अकस्मात सभी रणवाद्यों का निनाद रुक गया। चारों ओर निस्तब्धता छा गई, नीरवता, निःशब्दता फैल गई, भयानक शांति। क्यों, क्या हुआ सत्यसेन, कह जाओ, क्या पांडवों ने शरण स्वीकार कर ली? देखो तो। सोमरस भूलकर मैंने युद्ध भूमि की ओर उंगली उठाकर उसे आज्ञा दी। घोड़ा दौड़ाता हुआ सत्यसेन चला गया। अनेक शंकाओं ने मेरे मन में वात्या चक्र सा उठा दिया। रणवाद्य एकाएक बंद क्यों हो गए? युद्ध को कौन सी दिशा मिली होगी? क्या हुआ? दो घटकाएं बीत गई, फिर भी सत्यसेन वापस नहीं आया। मेरा मन विचारों की गदा घुमा घुमा कर अंत में श्रांत हो गया। तुरंत सम्रांगण पर जाकर क्या हुआ यह देखने के आने का एक विद्रोही विचार भी मन में तैर गया। परंतु पितामह के पतन के बिना युद्ध में अवतरित नहीं होना है, मेरी यह प्रतिज्ञा चक्कर काटती हुई आंखों के आगे नृत्य करने लगी। असह्य व्याकुलता कष्ट देने लगी, टप 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 टप। अंत में सत्यसेन का भूरा घोड़ा शिविर की ओर आता हुआ जालीदार गवाक्ष से दिखाई दिया। झटपट उठकर बाहर निकलकर मैंने उसकी वलगा थाम ली। क्या हुआ सत्यसेन, रणवाद्य कैसे रुक गए? युद्ध का क्या हुआ? कौन शरण आया? मैंने प्रश्नों के अनेक बाण उस पर फेंकी। कोई विशेष बात नहीं हुई है महाराज, अर्जुन ने अपने गुरु, चाचा, मामा, बंधु, पितामह, सुहृदय को सामने देखकर प्रेमाभिभूत होकर हाथ से गांडीव का त्याग कर रथ छोड़ दिया। आपके जनों से युद्ध करने के बजाय तीर्थ क्षेत्र पर जाकर भिक्षा मांग कर जीवन बिताना क्या बुरा है? यह प्रश्न उसने श्री कृष्ण से किया। श्री कृष्ण ने उसको निश्चित कुछ अद्वितीय बोध दिया है, तभी तो वह पुनः रथारूढ़ हो गया है। पितामहों को और द्रोणाचार्य को वंदन कर उसने धनुष पुनः संभाल लिया है। उसने जो श्वेत पोछा था उसकी धार धरती पर गिरी। पुनः रणवाद्यों का कोलाहल मचा, शंखों की ध्वनियां गूंजने लगी। क्षण भर में ही कुरुक्षेत्र का भव्य सम्रांगण बाण वर्षा से आच्छादित हो गया। आकाश का नीलापन सत्य है या असत्य यह देखने के लिए धूल के बादल स्वच्छंद होकर उड़ चले। घोषणा, गर्जना, चित्कार, वाद्यों के निनाद, रथों की घर घर, इसका रौद्र संगीत विश्वकर्ता को जागृत करने लगा। जाओ सत्यसेन, तुम भी युद्ध भूमि में जाओ। शिविर में प्रवेश करते हुए मैंने उसको आज्ञा दी, पर मैं एकाकी रह जाऊंगा, यह विचार कर वह टाल मटोल करता रहा। मेरे प्रति प्रेम के कारण उसका मन बड़ा मृदुल हो गया था। आज्ञा है, यह आज्ञा है सत्यसेन, मैंने तर्जनी उठाकर उसे युद्ध भूमि दिखाई। शतघ्नि के दंड की तरह वह चपट कर अपने अश्व पर आरूढ़ हो गया। वर्गा उछालता टप टप करता हुआ चला गया। मैं वहां अकेला ही रह गया। आसपास निर्विकार शिविर, सामने जैत्र रथ जिसका जुआ धरती पर रखा हुआ था, स्वर्ण मंडित विजय धनुष, दिग्विजय में साथ देने वाला ऊंचा वायुजित, इनके अतिरिक्त और कौन मेरा साथ दे सकता था? शिविर में बैठे रहना असह्य था, असंभव था। गंगा बहुत दूर रह गई थी। पितामह का पतन होने तक दृष्टद्वती का साहचर साधना स्थल, मस्तक पर से लौ शिरस्त्राण उतार कर स्वादे वेश में प्रकाश का अंतिम गहन ध्यान, अर्घ्य की अंतिम अंजलियाँ दृष्टिद्वति में से मेरे पैर अपने पुण्य पावन पात्र की ओर अपने आप मुड़ गए। वाद्यों का कोलाहल अस्पष्ट होता जा रहा था। प्रकाश के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए आकृष्ट मन शांत होने लगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री के मंत्रबद्ध का अमृत लेकर अंजलि में से दृष्टिद्वति का हिमवत शुभ्र जल पुनः उसी के पात्र में गिरने लगा। आसपास शुभ्र धवल प्रकाश ही प्रकाश घनीभूत होने लगा। पीठ तप्त होने लगी। जमते हुए दूध की तरह मन क्षण प्रति क्षण निग्रही गंभीर और सुदृढ़ होने लगा। 20 9 दिन हो गए। इस दीर्घकाल में समरांगण में क्या हुआ और क्या नहीं, इसका समस्त वृत्तांत प्रतिदिन संध्या समय सत्यसेन से ज्ञात होता रहा। अपने भूरे घोड़े को चतुरंग दल में संच्छन्नता से दौड़ाया करता और आंखों में खींचे हुए क्षण चित्रों को वह प्रतिदिन संध्या समय शिविर में मुझे सुनाया करता। जैसे ही वे क्षण चित्र मेरी आंखों के आगे खड़े होते, मेरा संपूर्ण अंग अत्यंत संतप्त हो उठता। गुरु द्रोण, कृपाचार्य, जयद्रथ, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी मामा, जरासंध का वीर पुत्र सहदेव, कृतवर्मा, बृहदबल, वाहलीक, भगदत्त, भूरिश्रवा, क्षेम, धूर्ति, दुर्योधन, दुशासन, पितामह के सभी महारथी समरांगण में थे, परंतु मत्स्य और विराट की लक्षावधि सेना को मारने के अतिरिक्त वे किसी पांडव योद्धा का इन 9 दिनों में कुछ नहीं कर पाए थे। पराक्रम की सीमारेखा को पार करना उनके लिए कठिन था, जिन्होंने अपने गुरु साक्षात जामदग्नि परशुराम को भी पराजय का काला कलंक स्वीकार करा दिया था। वे पितामह भीष्म सेनापति के रूप में पांडवों के आगे कैसे निस्तेज हो गए? क्या इसका कारण केवल वृद्धत्व था या श्रीकृष्ण का रणकुशल दांव पेच? नहीं, शायद प्रेम के कोमल पास उनसे टूट नहीं रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति को आबद्ध कर देने वाले प्रेम की आसक्ति के लचीले बंधनों को वे क्षत्रिय होकर रणभूमि में भी नहीं तोड़ पा रहे थे। श्री कृष्ण ने उसे तोड़ दिया था, परंतु उनके भक्त काल आने वाले पितामह के रथ के साथ वह प्रेम सम्रांगण में भी उनकी छाया की तरह पीछा कर रहा था। प्रेम, प्रेम जो समय पर एक महान प्रेरक शक्ति सिद्ध होता है, आज ठीक संकट के समय पितामह जैसे शूर योद्धा को भी दुर्बल बना रहा था। पितामह के संबंध में यह प्रतिदिन सुनने को मिल रहा था। मन पांडवों की ओर, शरीर कुरु सेवा में, इस द्विधा मन स्थिति में वे लड़ रहे थे। अपने मामा को मारने वाले श्री कृष्ण का आदर्श वे भूल गए थे। पिता की आज्ञा पूर्ति के लिए अपनी माता रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने वाले अपने साक्षात गुरु परशुराम का आदर्श वे भूल गए थे। वे जीवन भर कौरवों के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे थे और इस समय भी वे लक्ष लक्ष कुरु सैनिकों को भीम की गदा तथा अर्जुन के बाणों के दाव पर लगाकर उसी षड्यंत्र की संपूर्ति कर रहे थे। यदि उनको यही करना था तो महामंत्री विदुर जी के साथ उन्होंने भी हिमालय का मार्ग क्यों नहीं पकड़ लिया? पितामह अपना धवल चरित्र केवल प्रेम के कारण कलंकित कर रहे थे, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। गुरु के रूप में पितामह श्रेष्ठ माने गए, जीवन भर के निष्कलंक ब्रह्मचर्य के महान पद पर आसीन हुए, परंतु सेनापति के रूप में पांडवों से सौम्य युद्ध करके कुरुओं को दिग्भ्रांत करने के बजाय यदि वे स्पष्ट रूप से पांडवों की ओर से भी लड़े होते, तब भी एक योद्धा के रूप में उनका स्वागत कर मैं उनके चरण पूजता। जब जब युद्ध के महान विश्व बीज अंकुरित होते, तब तब निष्पक्ष और हतप्रभ तटस्थ की भूमिका लेकर लिखे गए को शोकांत नाटक का यह अंतिम अंक भी वे मानव तटस्थता से भी निभा रहे थे। अखाड़े जैसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अवसरों पर उनकी न्यायप्रियता मुझे स्पष्ट दिखाई दी थी, इसीलिए मेरे मन में उनके प्रति नितांत आदर था। इसीलिए मेरा मन पूछ रहा था, पितामह इस प्रकार का आचरण क्यों कर रहे हैं? सत्यसेन ने जिन क्षण चित्रों का वर्णन किया था, वे मुझे स्वस्थ नहीं बैठने देते थे। रात के घनीभूत अंधेरे में भी निद्रा में अपरिचित बने हुए मेरे नेत्रों के पक्षी शिविर की छत में प्रतिदिन चोंच मार रहे थे। सम्रांगण के प्रत्येक दिन के चित्र उस पर अंकित कर रहे थे। पहले दिन के अत्यधिक उत्साहपूर्ण युद्ध में सात्यकी के विरुद्ध लड़ने वाला कीर्तिवर्मन, विराट पुत्र उत्तर को मौत के घाट उतारने वाला शल्य, इरावान और श्रुतायु का घनघोर युद्ध, कुंतीभोज को घेरने वाले बिंदानुबिंद, द्रुपद पर चढ़ाई करने वाला जयद्रथ, बृहदबल को घायल करने वाला अभिमन्यु, अश्वत्थामा द्वारा खदेड़ा गया शिखंडी आदि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। परंतु उस रात मन केवल एक ही वीर के आसपास भटकता रहा, पांचाल राज श्वेत के आसपास। पांडवों की ओर से लड़ते हुए उस वीर ने पहले दिन के निर्विरोध नायकत्व का मान प्राप्त कर लिया था। पितामह को संतुष्ट कर उसने सहस्त्रु, सैंधव, गांधार, कलिंग और कुलिंद काट डाले। भयग्रस्त सेना पितामह का नाम लेकर त्राही त्राही करती हुई उनके महारथ का आश्रय लेने लगी। तुरंत पितामह श्वेत के सामने आए और उसके श्वेत नाम के अनुरूप कंठ भेद कर उसकी धवल कीर्ति का मार्ग सुलभ कर दिया। संध्या समय जब युद्ध बंद हुआ तब सभी सैनिक योद्धाओं के श्वेत झुंड के झुंड श्वेत की चेतनाहीन शरीर को देखने के लिए एकत्रित हो गए। पहले महान दिवस का अंत श्वेत ने श्वेत पूर्ण किया। मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीया के दिन पितामह ने सारंग पक्षी जैसी सैन्य रचना की। उसको प्रवाहहीन करने के लिए पांडवों के तत्कालीन सेनापति धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना क्रौंच पक्षी के आकार में खड़ी की। वह स्वयं अग्रभाग में खड़ा होकर अपने पिता द्रुपद को पराजित करने वाले गुरु द्रोण को अपनी रक्तवर्णी अग्निशम नेत्र फाड़ फाड़ कर ढूंढ रहा था। सूर्योदय होते ही हाथ उठाकर संघ की तरह गरजता हुआ वह अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। शल्य शंख से भिड़ गया। पितामह ने पंचालों की सेना को बाणों से ढक दिया। अभिमन्यु ने लक्ष्मण पर आक्रमण किया। धूल की छटा छा गई। अपने पराये का भी किसी को पता नहीं था। सात्यकी के झंझावाती गर्जनायुक्त भ्रमण से दूसरा दिन गुंजित हो गया। पितामह के साथी को धराशायी कर उसने अपने विष्णी कुल का वास्तविक परिचय दिया था। शवों को ढेर हिमालय की ऊंचाई मापने लगे। नाराज, वस्तिक, पद्म, सूचि, गोमुख, गवास्त्य आदि असंख्य बाणों के पर्वत खड़े हो गए। कृष्णा चतुर्थी का तीसरा दिन उदित होते ही पितामह ने सुरक्षित सेना की गरुणाकार सैन्य रचना की। उनको ग्रस्त करने के लिए सेनापति बने हुए अर्जुन ने अर्धचंद्राकार सैन्य खड़ा करके दाईं ओर चक्ररक्षक के रूप में भीम को खड़ा किया। पक्षियों की किलबिलाहट में खड्गों की खड़खड़ाहट मिश्रित करते हुए वे मध्यान्ह काल तक कौरवों का क्रूर संहार करते रहे। कोसल, केकय, गांधार, संसप्तक, त्रिगर्त, इनके सेनापतकों के सैकड़ों अश्वसाथ, रथी और पदाति काम आए। उनको रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। भयग्रस्त होकर कुरुसेना त्राही त्राही करती हुई दुर्योधन के आश्रय में दौड़ी। सेनापति बने हुए पितामह पर सौम्य युद्ध करने के कारण दुर्योधन बरस पड़ा। उसके मर्मभेदी वाक ताड़न से संतप्त होकर भीष्म ने पांडव सेना को इस प्रकार खदेड़ा कि ऐसा लगने लगा मानो वह अब रणक्षेत्र से बाहर चली जाएगी। यह देखते ही हाथ में शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा करने वाले श्री कृष्ण अर्जुन का आनंदी घोष रथ छोड़कर धरती पर कूद पड़े। किसी रथ के उखड़े हुए चक्र को हाथ में उठाकर वे झटपट पितामह की ओर दौड़े। वे 10 पग भी आगे न आए होंगे कि तभी अर्जुन ने रथ से कूद कर उनको रोका। तीसरा दिन धरती पर अंधकार के काले दाने बोता हुआ श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा भंग करके चला गया। मेरी बार बार यही इच्छा होती थी कि पितामह से मिलूं और उनसे प्रार्थना करूं कि वे ऐसे ही घोर संग्राम करते रहें, परंतु यह संभव नहीं था। एक अर्धरथी, एक महारथी के एक सेनापति के शिविर में कैसे जा सकता था। चौथे दिन से अंधकार बढ़ना प्रारंभ हो गया। उसी दिन से एक एक कला से क्षीण होते हुए चंद्र की तरह हमारी सेना निष्प्रभ होने लगी। वह दिन भीम और कटोत्कच ने अपने हाथों में रखा था। बौखलाए हुए भीम ने महासागर जैसी अपनी विशाल काया को फुलाकर जब सिंहनाद किया तो हाथियों के देह के रोम भी खड़े हो गए। वृष परवार से मिली हुई अपनी गदा उठाकर वह गजदल में प्रलय मचाता हुआ कुरुओं के हाथियों को कुरुओं पर ही उल्टा डाल रहा था। वर्षा ऋतु के जल प्रवाह की तरह आसपास सैन्यों के तटों को ढहा रहा था। यह भीम नहीं, यम है, कहते हुए कुरु सैनिक इधर उधर दौड़ने लगे। उस छिन्न भिन्न सेना को और अधिक घबराहट में डालने के लिए घटोत्कच ने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ कर उनका मार्ग रोकना चाहा। भीम के सामने खड़े होने की शक्ति एक ही गदा वीर में है, यह सोचकर सबने दुर्योधन को उससे भिड़ा दिया। बौखलाए हुए दो हाथियों की तरह वे एक दूसरे से भिड़ गए। प्रहार पर प्रहार करके स्फुलिंग की वर्षा करने लगे। युद्ध छोड़कर सैनिक उनका वेद तत्पर युद्ध देखने लगे। जैसे ही दुर्योधन ने मस्तक के पास एक मर्मभेदी प्रहार किया, भीम धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, जैसे हिमालय की चट्टान टूट पड़ी हो। धरा हिल गई। कुरुसेना ने दुर्योधन का गगनभेदी जय जयकार किया, परंतु घड़ी भर में ही पुनः भीम उठकर भीम ने शुक्रदेव, केतुमान, सत्यदेव, सेनापति भानुमान, जलसंध, उग्र, वीरबाहु, सुलोचन, इन सभी दुर्योधन बंधुओं को विदीर्ण कर दिया। क्षुधित व्याघ्र की तरह, मशाल की तरह जलते हुए रक्तवाणी नेत्रों को चारों ओर घुमाता हुआ वह झंझावात की तरह चतुरंग दल में निर्विरोध भ्रमण करने लगा और जो मिला उसी से आह्वान देकर जा टकराया। अपनी भारी गदा से अनेक बलवानों को छिन्न बिच्छिन्न कर सोमरस के कुंभ के कुंभ रिक्त करता हुआ दुशासन कहाँ गया, दुशासन कहाँ गया कहकर थय थय नाचने लगा। कृष्णा षष्ठी के 5वें दिन के युद्ध में हमारी सेना ने मकराकृति बनाई। उस पर अर्जुन की शेन पक्षाकृति पांडव सेना ने आक्रमण कर दिया। संपूर्ण कुरुक्षेत्र के आसपास अंशुक, दंड, पर्याण, खंडित, फलक, भग्न, रथचक्र के ढेर लगे हुए थे। हाथ, पैर, मस्तक, धड़ इनके पर्वत खड़े थे। मैनाक पर्वत के गृध, कूकर, कुरकुरी आदि मांसभक्षी पक्षियों के झुंड युद्धभूमि के आसपास उतरने लग गए थे। पांचवें दिन का नायक था भूरिश्रवा। वह सात्यकी के 10 पुत्रों को यम सदन भेजकर अब सात्यकी को घेरने में लगा था। अभिमन्यु और लक्ष्मण में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा था। सारंग पक्षी के आकार की गुरुसेना छठे दिन जब रणांगण पर उतरी, तब सामने पांडव सेना का विशाल मकर देखकर पितामह भी थर्रा गए होंगे, क्योंकि उनके सामने रथ से नीचे उतरकर हाथ में गदा लिए हुए भीम ने क्रोध से द्रोण, अश्वत्थामा और शल्य के रथों को एक एक कर उलट दिया और उन्हें उठाकर दूर फेंकने लगा। उसका साहस कहीं धोखा न दे दे यह सोचकर धृष्टद्युम्न ने उसे रोककर पुनः रथारोहण किया। उसने दुर्योधन को मूर्छित कर दिया था। धृष्टद्युम्न भीम और अर्जुन के भयंकर आक्रमणों से घबराकर कुरुसैनिक इस प्रकार इधर उधर दौड़ रहे थे कि मूर्छित दुर्योधन को सम्रांगण से बाहर निकालने के लिए अश्वत्थामा को मार्ग नहीं मिल रहा था। युद्ध का निर्णय तो अलग रहा, किंतु सेना को एकत्रित करने की साधारण कुशलता भी पितामह में नहीं थी, यह कौन कह सकता था। परंतु कुछ भी घटित नहीं हो रहा था, होने वाला भी नहीं था। सातवां दिन भी चला गया। पराजय की घनी छाया मेरे ही नहीं अपितु सभी योद्धाओं के मन पर छाने लगी। 25 लक्ष की विशाल सेना और 180 वर्ष का अनुभवी सेनापति होते हुए भी युद्ध कुरुओं की दृष्टि से एक पग भी आगे नहीं सरक रहा था। क्यों नहीं सरक रहा था? आठवें दिन रात को संतरस्त और चिंता में डूबे हुए शकुनी मामा तथा दुर्योधन मेरे शिविर में आए। कर्ण, शस्त्र हाथ में लो, अब तो श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भी भंग हो गई है। चलो, मैं तुम्हारे नेतृत्व में पितामह को अर्धरति के रूप में लड़ने को बाध्य करूंगा। दुर्योधन का एक एक शब्द उसके हृदय की विवश व्याकुलता को स्पष्ट कर रहा था। मृत्यु के द्वार पर मनुष्य की दो ही प्रतिक्रियाएं हुआ करती हैं, एक तो पराकोटि की क्रूरता की, दूसरी पराकोटि की मृदुलता की। वह मृदुल हो गया था। कर्ण को मानो वह एक ऐसा घोड़ा समझ रहा था जिसको चाहे जिस समय युद्ध के रथ में जोत दिया जाए। राजन, सबकी प्रतिज्ञाएं भंग हो जाएंगी, धरती पर उधर फट जाएगा, परंतु कर्ण की प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं होगी। सेनापति के रूप में उन्हें सचमुच यदि मेरी आवश्यकता प्रतीत हो रही हो तो पितामह से कहो कि शस्त्र फेंक कर अलग हो जाए। मैंने दुर्योधन को चलता किया। कुरुओं की 10 लक्ष सेना काम आ चुकी थी। पितामह का क्रूर द्युत रुक नहीं रहा था। वे मोह और प्रेम के पाशों को तोड़ नहीं पाए थे। मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेरे शिविर से बाहर निकला हुआ दुर्योधन सीधा पितामह के शिविर में प्रविष्ट हुआ था। उनमें क्या बातें हुई थी यह मैं भी नहीं जान सका, परंतु शायद दुर्योधन ने उनसे स्पष्ट रूप से सेनापति पद का त्याग करने के लिए कहा होगा, क्योंकि 9वें दिन सर्वतोभद्र आकार में सैन्य रचना कर पितामह ने पांडवों को संतरस्त कर दिया। शतानेक जैसे महारथी को मारकर आशा के अक्षय दीप प्रज्वलित कर दिए। यह आशा होने लगी कि अब कुछ अवश्य होगा। 10वीं के चंद्रकला सिर पर धारण किए हुए ही उस रात कुरुओं के शिविरों ने विश्राम किया था। दृष्टद्वती का जल कलकल करता हुआ भी दौड़ रहा था। उसका धवल वर्ण युद्धभूमि की रक्त गंगा मिलने से लाल हो गया था। नियति चक्कर काट रही थी। अच्छे भले 9 दिन। कृष्णा एकादशी का दिन आया। युद्ध प्रारंभ हुए 9 दिन हो गए थे। यह 10वां दिन उदित हो रहा था और दोनों की अपेक्षा ठंड कुछ अधिक प्रतीत होने लगी। युद्धभूमि निहार पटल छोड़ने को तैयार नहीं थी। आकाश भी आच्छादित था। सूर्योदय के साथ ही प्रलय ध्वनि सुनने का अभ्यास हो जाने के कारण दृष्टद्वती को अपने किनारे पर शांति देखकर एक विचित्र कमी से प्रतीत हो रही थी। मुझे भी कुछ कमी सी अनुभव होने लगी, क्योंकि सामने खड़ा हुआ दुर्योधन जो कुछ कह रहा था उस पर विश्वास कैसे किया जाए, यही समझ में नहीं आ रहा था। कल रात पितामह के शिविर में युधिष्ठिर आया था। उनके वार्तालाप में बारम्बार शिखंडी का उल्लेख हो रहा था। दुर्योधन के शब्द मेरे मस्तिष्क को सुन्न बना रहे थे। सेनापति होकर पितामह युधिष्ठिर से एकांत में मिले ही क्यों? उससे घड़ी भर वार्तालाप किया ही क्यों? और इतना करके भी सबको अंधेरे में क्यों रखा? क्या क्या योजनाएं बनाई गई? शिखंडी का उनसे क्या संबंध? कुछ भी अर्थ संगति नहीं बैठ रही थी। राजन, आज मेरी सहनशीलता का सचमुच ही अंत हो रहा है। आज यदि पितामह पांडव योद्धाओं में से किसी विख्यात महायोद्धा को न गिरा सके तो अपना पतन स्वीकार कर दे। मैं हाथ में शस्त्र ग्रहण कर लूंगा। यदि आज इनमें से कुछ न हुआ तो तुमने मेरे सिर पर जो राजमुकुट रखा है उसको तुम्हारे चरणों पर रखकर मैं चंपा नगरी का मार्ग स्वीकार कर लूंगा। 10 दिन तक रणवाद्य और शस्त्रों की ध्वनि दूर से सुनते सुनते अब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। मेरा रणांगण प्रिय वायुजित दिनानुदिन थकता जा रहा है। यात्रा रथ के साथ ही मेरी कीर्ति पर धूल संचित होती जा रही है। जाओ, पितामह से कहो कि यदि या तो युद्ध का बांध तोड़े या फिर कर्ण का कंठलाल ही तोड़ दे। दुर्योधन को रणांगण पर भेजते समय अंतिम संदेश देते हुए विवशता के खोखलेपन को छिपाने के लिए मेरे लिए संभव नहीं था। जैसे ही दुर्योधन तुनक कर बाहर गया, मैंने वायुजीत के साथ और 4 शुभ्र घोड़े जयद्रथ में जोते। मेरी तीव्र इच्छा थी कि जिसने जीवन भर मेरे सुख दुखों में सहर शांत बटाया था, उस शोण की समाधि पर पुष्पमाला अर्पित करने का कर्तव्य पीछे नहीं रहना चाहिए। कुरुक्षेत्र छोड़कर राजनगर की एक ओर छोड़ता हुआ विराटों की सीमा पर स्थित शोण की समाधि की ओर मेरा रथ दौड़ने लगा। रणवाद्यों का कोलाहल पीछे रह गया। संध्याकाल तक प्रत्येक दशा में लौट आना था। दोनों ओर दो दो साथी लेकर मुझे सदैव शोण की तरह लगने वाला वायुजीत पूंछों के गुच्छों को फुलाता हुआ दौड़ने लगा। उसकी पूंछ के गुच्छे के अगणित सघन शुभ्र केशों की तरह ही शोण की स्मृतियां असंख्य थी, शुभ्र थी। यमुना के तीर पर खड़े हुए शोण की निस्तब्ध समाधि के पाषाण दृष्टिपथ में आते ही मुझे हाथ उठा उठा कर बुलाने लगे, वसु भैया आओ, यह क्रूर और अन्यायी जगत तुम्हारे मन को कभी नहीं समझ सका, समझ पाएगा भी नहीं। कहो, तुमको जो कुछ कहना हो मेरे कान में कहो। यह सारथी अपने सुख दुखों को हृदय में संभाल कर नहीं रख सकेगा, क्या यह समझाते हो तुम? यदि मैं जीवित होता तो हे सूर्यपुत्र, तुम्हारे रथ के घोड़ों के बलगाय मैं संभाल लेता, तुम्हारा लोहत्राण तुम्हारे देह पर चढ़ा देता, परंतु उल्टे आज तुम्हें मुझ पर फूल चढ़ाओगे। किस लिए लाए हो वह पुष्पमाला? छोटे को कोई कभी पुष्प अर्पित नहीं किया करता। यमुना का शांत गंभीर प्रवाह और उसकी समाधि, सब कुछ मेरी ही तरह मौन था, परंतु उस मौन भाव के सवाक अपनत्व को मैं अनुभव कर रहा था। यमुना के स्वच्छ जल में हस्तमुख प्रक्षालन कर हाथ में ली हुई पुष्पमाला समाधि पर अर्पित करते ही मन शांत हो गया। जल की ओर देखते हुए अश्वत्थामा की यूं ही कभी कही हुई एक बात मनश्चक्षु के सामने खड़ी हो गई, जीवन जन्म मृत्यु के पात्र में बहने वाली नदी है। चलता हूँ शोण, घुटने टेक कर मैंने समाधि को वंदन किया। अस्त होती हुई रवि रश्मियों को पीठ पर लेता हुआ वायुजीत पुनः कुरुक्षेत्र की ओर दौड़ने लगा। अब कोई चिंता नहीं थी, पैरों में उलझने वाला कुछ नहीं था, पीछे मुड़ने का कारण नहीं था, वह पूरा दिन दौड़ने में ही बीता। जिस समय युद्ध रोक देने का संकेत करने वाले रणसिंगे बज रहे थे, उसी समय मेरा रथ शिविर के सामने आया। सब कुछ कैसा शांत लग रहा था। सदैव एक दूसरे के पराक्रम का जी खोलकर वर्णन एक दूसरे को सुनाते हुए और शिविर की ओर लौटने वाले सैनिक मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिए। इतनी नीरव भयानक शांति क्यों? युद्ध बंद हो गया था या फिर सैनिक लौट क्यों नहीं रहे थे? क्या हो गया? आशंका की तीव्र लहर उतरते ही मैंने वायुजीत के रथ से मुक्त किया। एक टिटेरी दृष्टद्वती के किनारे कर्कश स्वर में टिटियाती हुई भागी। उसकी चीख मुझे विचित्र सी लगी। संध्या छाया का धूमिल प्रकाश भी अस्पष्ट होता जा रहा था। कृष्णा एकादशी की सघन काली माँ दोनों सेनाओं के शिविरों के आसपास घिरती आ रही थी। मशाल जलाकर भी उसको दूर नहीं किया जा सकता था। सूर्यास्त के बाद एक घड़ी बीत चुकी थी, किंतु सत्यसेन शिविर की ओर क्यों नहीं लौटा? या किसी को आज युद्ध में अचूक लक्ष्य बना दिया? शिविर के द्वार पर पटल कलाई के चारों ओर लपेटते लपेटते इतना जीर्ण हो गया था कि फटने ही वाला था। अंधकार को भेद कर कुरुक्षेत्र पर लगे हुए मेरे नेत्र थक गए। क्या हो गया था? आज क्या घटना हो गई थी? अंत में टप 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 की टापे कान में पड़ी। सत्यसेन का घोड़ा नृत्य की भव्य लय में नहीं आ रहा था। उसकी चाल असंतुलित थी। महाराज, पितामह का पतन हो गया। वह मेरे सामने आते ही घोड़े पर से जैसे तैसे नीचे आता हुआ बोला, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे हिमालय ही टूट पड़ा हो। किसने किया यह दिव्य पराक्रम? मैंने उसके कंधे झकझोरते हुए चीख कर उससे पूछा। अर्जुन ने खंड शिखंडी को आगे कर, पितामह व्याकुल हैं, सब उनसे मिलकर आ चुके हैं, फिर भी उनकी आंखें अभी किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं। और बीच में लड़खड़ाता हुआ वह बोला, और क्या सत्यसेन? अपना भानुसेन चला गया। आपके हाथों में उसका अग्नि संस्कार कराने के लिए उसका शव सबने रोक रखा है। उसने मुंह मोड़कर अपनी आंखों से अधरी का छोर लगाया। भानुसेन गया? सत्यसेन जाओ, उसका अग्नि संस्कार करो। तुम लोग करो, मेरी प्रतीक्षा मत करो। वायुजीत पर आरूढ़ होकर मैं उसी समय युद्धभूमि की ओर चल दिया। मन में विचारों का पात्या चक्र चल रहा था। चारों ओर अंधकार था। पितामह का पतन हो गया, गुरुओं के राजदंड का पतन हो गया। मेरे उनसे मतभेद थे, वे एक सारथी से अधिक मुझको नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में मेरा मूल्य एक अर्धरथी से अधिक नहीं। फिर भी मन उनकी ओर क्यों आकृष्ट हो रहा था? या यह आत्मवंचना है? नहीं नहीं, जो योद्धा आहत होकर मृत्यु के द्वार पर पड़ा हुआ है उससे मिलते समय वैयक्तिक स्पर्धा कैसी, मान अपमान कैसा, मतभेद क्या? उस महापुरुष का साथ अब कुछ क्षणों का ही है, क्या अब उसके प्रमादों की मन ही मन रट लगाते रहें? और कोई अब भले ही कह सकता हो, कर्ण नहीं कर सकता, उनसे मिलना ही चाहिए सत्य की पुत्र की अंत्येष्टि एक ओर। मेरे मन के भाव जानकर घनी भीड़ के पास वायुजीत अपने आप एक शिविर के सामने रुक गया। मशालों का प्रकाश अंधकार को दूर करने के बजाय उसको और अधिक विभत्स बना रहा था। उदास मुख सैनिकों का घेरा मरणोन्मुख सेनापति के दर्शन करने के लिए सघन हो गया था। राजभवन में सुखशैया पर निद्रा लेने वाला यह वीर शरों के तृणों के शैया पर पड़ा हुआ था। दाढ़ी के शुभ्र केशों में दो तीन शुष्क तिनके अटक गए थे। मस्तक पर गौरवशाली मुकुट भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। स्थान स्थान पर शरीर में घुसे हुए पस्तिक बाण ज्यों के त्यों थे। आंखों के चारों ओर काली सिकुड़ने के वलय बन गए थे। उनके शरीर के नीचे तृणधन्य हो गए थे, पावन हो गए थे। शंपाक ब्राह्मण उनके मस्तक को संभाले हुए था। उस ब्राह्मण पर उनकी असीम श्रद्धा थी। महाबाहो भीष्म, भावावेग में पितामह के बजाय भीष्म शब्द ओठों से निकलने का भान जब मुझे हुआ तब तक वे उनके कान तक पहुंच चुके थे। वे लौटाए नहीं जा सकते थे। पलकों की सिकुड़नों के पीछे छिपे हुए तेजस्वी नेत्र आधे खुल गए, दीर्घ ओष्ठ अस्पष्ट हलचल कर उठे। वहीं पाषाण पर बाण टकराने जैसी आवाज उस वृद्ध शांत और मृत्युशैया पर पड़े हुए जर्जर शरीर से पुनः उमड़ कर आई, भावनाओं के और अपनत्व के वलय लेकर। कौन? कर्ण, आ इधर पास आ। दोनों हाथ हिलाकर आसपास खड़े सेवक और सैनिकों को दूर खड़े हो जाने का संकेत किया। धू धू जलती हुई मशाल के अतिरिक्त आसपास कोई भी खड़ा नहीं रहा। मस्तक छोड़कर शंपाक भी चला गया। हाँ, मैं कर्ण ही हूँ, सूत पुत्र कर्ण। पास कैसे आऊँ, क्यों आऊँ? मेरे स्वाभिमान का घोड़ा कहीं निश्चित ही झिटक रहा था। कर्ण कौन, सूत कौन क्षत्रिय, यह सब असत्य विचार है। आ मेरे पास आ, बिल्कुल पास आ। अरे एक योद्धा के रूप में ही अस्तंगत सेनापति की आज्ञा का पालन कर ले। मैं पास आ गया। हिमालय के खड़े शिखर के छोर पर जैसे तिरछा विंध्याचल आ गया था इतनी सुकोमल ध्वनि, इतना अपनत्व तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। जिस ढंग से उन्होंने जीवन भर सत्य को हृदय से लगा रखा था, वैसे ही अपनत्व तो से एक हाथ फैलाते हुए एकदम पास खींचकर उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। संपूर्ण शरीर में रोमांच की लहर सी दौड़ गई। यह तीसरा दिव्य और अविस्मरणीय स्पर्श था। कर्ण, तुम सुतपुत्र नहीं हो, तुम राजमाता कुंती देवी के सबसे पहले पुत्र हो। क्षण भर की शांति में मशाल की फरफर स्पष्ट सुनाई देने लगी। वे समझ गए रहे थे कि जो सत्य उन्होंने कहा था वह मैं उन्हीं के मुख से पहली बार सुन रहा था। उस संबंध में मुझे अब उत्सुकता नहीं थी। मैं सुतपुत्र नहीं हूँ, कुंती पुत्र नहीं हूँ, सूर्य पुत्र भी नहीं हूँ। मैं एक जीवित व्यक्ति हूँ, जो भी आए उसी का दृढ़ता से सामना करने के लिए खड़ा था। बस यही मेरी मान्यता थी। क्यों? यह सुनकर मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। उनकी छाती में गड़े हुए बाण बातें करते समय मंद मंद स्पंदित हो रहे थे। नहीं, यह सत्य मैं पहले ही सुन चुका हूँ। तो फिर मैंने स्थान स्थान पर तुम्हारा जो अनादर किया, अपमान किया, उसके लिए तुम्हारा मन मेरे प्रति तिरस्कार और क्रोध से भर गया होगा। परंतु पुत्र, यह बात नहीं है। अरे तुम्हारी अवहेलना करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं था। तुमको अर्धरथी कहकर युद्ध से दूर हटाने में मेरा यही उद्देश्य हृदय में छिपा था कि तुम संबंध न जानने के कारण अपने सगे बंधुओं से न लड़ सको। वृद्ध लोगों के मन निहाई जैसे होते हैं, तब तो लोहा मस्तक पर रखना पड़ता है, ऊपर से घन क्या आघात भी। इतना करने पर भी संसार को जो सुनने को मिलता है वह है लोहे के तथा ऊपर के घन के टड़ककार। निहाई निस्तब्ध होती है, उसका जन्म इसीलिए होता है। तुम मिलने चले आए, यह अच्छा ही हुआ। मेरे संबंध में जो भी संदेह तुम्हारे मन में हो उन सबको दूर कर दो। तुम अर्धरथी नहीं हो, तुम तो महारथियों के महारथी हो। मरणतुल्य यातनाओं से विवल होकर वे क्षण भर रुके। एक दीर्घ निश्वास छोड़कर उन्होंने आंखें खोली। पितामह, कंठ अवरुद्ध होने से मैं कुछ कह नहीं सका। कर्ण, काशी राज्य में भानुमति का हरण करने वाले दुर्योधन पर टूट पड़ने वाले देश देश के राजाओं को अकेले तुमने रोका था, यह कौन भूल सकता है। जरासंध को तुमने जो धूल चटाई थी वह मगधों को ही नहीं अपितु मुझे भी स्तंभित कर देने वाली थी। तुम्हारी दिग्विजय का डिंडिम अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है। शस्त्र अशस्त्रों में बाहुबल में तुम अर्जुन से श्रेष्ठ हो, और कौंतेय विगत 70 वर्षों से तुमने जिस तत्व ज्ञान पर आचरण किया है वह निश्चय ही युधिष्ठिर का सिर झुका देने वाला है। तुम्हारा बाहुकंटक इतना प्रभावशाली है कि वह भीम के भी प्राण ले लेगा। पुत्र तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान दे दीप्यमान हो, जाओ अपने बंधुओं में जाओ। जिसने दुख के अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं, राजमाता होकर एक योगिनी का कठोर जीवन जिसको बिताना पड़ा है तुम्हें देखने के लिए उसके नेत्रों के आतुर पक्षी जीवन भर फड़फड़ाते रहे हैं, मुख हृदय क्रंदन करता है, अपनी उस कुंती माता के चरणों में जाओ। मेरे मृत्यु के साथ ही शत्रुता के इस विनाशी बड़वाग्नि को बुझ जाने दो। तुम्हारे चले जाने पर दुर्योधन प्रत्यंचर टूटे हुए धनुष की तरह निष्प्रभ हो जाएगा। लक्ष लक्ष योद्धाओं के प्राण अकारण लेने वाला यह महायुद्ध यहीं रुक जाएगा। जाओ पांडवों की ओर जाओ। उनकी आंखों के छोरों पर के पास की सलवटें जल से पूर्ण हो गई थी। मेरी पीठ पर रखा हुआ हाथ स्पंदित हो रहा था। वक्ष में लगे हुए बाण थरथरा रहे थे। कर्तव्यच्युत करने वाले मोह के वही घेरे पुनः मेरे ओर चक्कर काट रहे थे। दृढ़ता से पुनः कुछ सुनना आवश्यक था। पितामह, यही विचार श्री कृष्ण ने मेरे सामने ऐसे ही भावपूर्ण शब्दों में रखा था, एक कुशल राजनीतिक दाव के रूप में। राजमाता ने भी यही मोह मेरे सम्मुख खड़ा किया था जिससे कि उनके पुत्रों को मुझसे अभय प्राप्त हो सके, परंतु उसी योजना को आप कितने यथार्थ ढंग से रख रहे हैं। मृत्युशैया पर पड़े हुए आप मुझसे यह कह रहे हैं, इसको आपका मुझ पर विशेष स्नेह ही प्रकट होता है, परंतु मैं मार्ग भ्रष्ट हो गया। अब सिवाय इसके कि मैं उसी पर चलता जाऊं, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। जैसे पांडवों के लिए वासुदेव हैं, वैसे ही कौरवों का सहायक बनूंगा। अपना धन, शरीर, आप्तजन, साथ ही कीर्ति, सब कुछ मैंने दुर्योधन के लिए रख छोड़ा है। अर्जुन सहित मैं सभी पांडवों को संतप्त करूंगा जैसे वायु अग्नि को करता है। क्षमा कीजिए और मोह के महासंग्राम में अब पुनः मुझे मत डालिए। यदि मुझे आप कुछ दे सकें तो आशीर्वाद दें। कर्ण, तुम धन्य हो। कुंती के प्रथम पुत्र कहलाने योग्य तुम ही हो। जाओ, वैर भाव छोड़कर कुरुओं के सेनापति के रूप में हाथ में धनुष लो। एक क्षत्रिय के रूप में अंधकार रहित होकर सेना का नेतृत्व करो। देवादिकों का वैभवशाली लोक तुम्हारी उच्च अंतरात्मा को प्राप्त होगा। जाओ, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, सदैव हैं। उनके नेत्रों का हिमालय शरों की शैया सींचने के लिए द्रवित होने लगा। उनके बाण मेरे हृदय में कसकने लगे। उठकर उनको अभिवादन कर प्रदक्षिणा करते समय संभाला हुआ मन का कुंभ तड़क गया। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले सत्यभाष्य पितामह को भी यदि मृत्यु घेर सकती है तो फिर जगत में शाश्वत है ही क्या। इसलिए अर्जुन ने उस प्रतितुल्य मानव को जिसने उसको अपनी गोद में खिलाया था इस प्रकार लकड़ी का कुंदा बनाकर शरों के तृणों पर फेंक दिया। मेरे नेत्रों से गिरे हुए अश्रुओं के मौक्तिक उनके पुण्यमान चरणों पर जा पड़े। हाथ उठाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, जय तुकर्ण। जीवन भर सूर्यदेव को अर्घ देने वाला, वृद्ध शरीर में सुदृढ़ मन रखने वाला सेनापति सूर्यदेव की उत्तरायण में आने तक मृत्यु को भी रोक सकता था। उनकी अंतिम साधना में व्याघात नहीं पड़ना चाहिए, यह सोचकर मैं शिविर की ओर लौटा। आसपास मशालें भगभग कर रही थी। घनीभूत अंधकार के साथ झींगुर तालबद्ध करकश स्वर में चीख रहे थे। मन की बीड़ा का एक तार देह के गहन गंभीर कोने में दूर कहीं अब भी झंकृत हो रहा था। राधा माता का आशीर्वाद नहीं ले पाया था। पिताजी के चरण सिर से लगाने का अवसर नहीं मिला था। वृशाली से मिल नहीं पाया था। सुप्रिया का समाचार प्राप्त नहीं हो सका था। राजभवन में अकेला वृषकेतु रह गया था। वह क्या क्या कल्पनाएं करता होगा यह कहा नहीं जा सकता। सेनापति के चयन के अवसर पर जो आकस्मिक घटना हो गई थी उसके कारण राजनगर में पैर तक नहीं रखा जा सकता था। सबसे कैसे मिल सकूंगा, कल तो सम्रांगण में उतरना है। 21। भानुसेन का अंत्य संस्कार करने के लिए गया हुआ सत्यसेन अभी लौटा नहीं था। मेरे मृत पुत्र की आत्मा, क्योंकि मैं उसके लिए गया नहीं था इसीलिए मुझ पर क्रुद्ध नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास था। संग्राम में विरोचित मरण स्वीकार करने वाले उस वीर को यह ज्ञात भी नहीं था कि जिस भीम ने उसका वध किया वह उसका चाचा ही है। अज्ञान के कारण ही सही, परंतु भीम ने मेरे एक पुत्र की बलि ले ली थी। मेरे मन में श्रद्धा के, माया के, संबंध के बचे कुछ अंकुर भी उससे जलकर राख हो गए थे। मन बधिर था, शरीर शून्य था। बीच बीच में पितामह की विकलांग मूर्ति शिविर के पटल पटल पर दिखाई दे जाती थी। वैर भावना रखते हुए युद्ध करो, अहंकार रहित होकर नेतृत्व करो। उनके अंतिम शब्द आंखों के आगे नाच रहे थे। आंखें बंद किए मैं आसन पर बैठा था, पर मृदुल आसन मुझे कटीला लग रहा था। महाराज, बाहर आपसे मिलने के लिए कौन आया है, देखिए तो। जैसे वायु का झोंका अनजाने में भीतर आ जाता है, वैसे ही सत्यसेन कब शिविर में घुस आया इसका पता भी न चला। सत्यसेन जाओ, अब कर्ण से मिलने के लिए मृत्यु के अतिरिक्त और कोई भी नहीं आ सकता। मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता, सम्रांगण में अर्जुन को छोड़कर। असह्य वेदना से मैंने शिविर के द्वार की ओर उंगली उठाकर उसको बाहर जाने को कहा। नहीं महाराज, बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसको देखते ही आप घड़ी भर के लिए मृत्यु को भी रोक देंगे। बाहर मृषाली खड़ी है। सत्यसेन बंदूक रूप में अपना कर्तव्य कर रहा था, या एक कुटुंब वत्सल के रूप में पत्नी को लाकर पति से मिला रहा था, या कल सेनापति बनने वाले अपने नायक की मनस्थिति जानने वाले सैनिक का कर्तव्य पूरा कर रहा था। मेरे आसपास के ये सब लोग बिना लोभ के मुझ पर अकारण ही इतना प्रेम वर्षा क्यों कर रहे हैं? सचमुच ही मैं इसको योग्य हूँ क्या? वृशाली, तो फिर वह बाहर ही क्यों खड़ी है सत्यसेन? मैंने उसको शिविर से बाहर देखते हुए पूछा। उसका कहना है कि युद्ध से पूर्व एक सेना प्रमुख के शिविर में उसकी स्त्री को देखकर कल सैनिक कहेंगे कि हम सबकी स्त्रियाँ यदि इसी तरह शिविर में आएँ तो क्या उचित होगा? महाराज उनको क्या उत्तर देंगे, इसीलिए वह बाहर खड़ी हैं। आपके दर्शनों के लिए बहुत ही आतुर है महाराज, मैं भी चाहता हूँ। तभी तो अंधकार की चिंता न करते हुए मैं हस्तिनापुर से उसको लाया हूँ, उसका बंधु हूँ ना। वह भान रहित हो रहा था, उसका प्रत्येक शब्द प्रार्थना जैसा था। चलो, मैं उसके पीछे पीछे शिविर से बाहर आया। मशाल के धूमिल प्रकाश में मेरी पत्नी खड़ी थी। भानुसेन की मृत्यु की वार्ता सत्यसेन ने शायद उससे कही नहीं थी, तभी वह शांत थी। मेरे जीवन की सहचरी युद्धभूमि में भी मेरा साथ निभाने वाली थी क्या? वृशाली अंदर आओ महाराज, वह संकोच कर रही थी। आओ वृशाली, तुम्हारे आगमन से कोई भी कुरु सैनिक माथे पर बल नहीं डालेगा। आदर्श आदर्श कहकर जो विचार मैंने हृदय में लगा रखे थे, समाज की दृष्टि में उनका मूल्य पानी कानी कौड़ी के बराबर भी नहीं है। अब तुम कैसा आदर्श निभा रही हो, संकोच मत करो। मस्तक पर लपेटा हुआ अंशुक संवारती हुई वह शिविर में आई। मेरे कहने पर तो वह धधकती हुई अग्नि में भी जा सकती थी। वैशाली, तुम अकेली ही आई हो? मैं और अधिक कुछ भी न कह नहीं पा रहा था। माताजी और पिताजी अब बहुत शिथिल हो गए हैं, वे यहाँ तक नहीं आ सकते। ऋषिकेतु भानुसेन के लिए शोक कर रहा है, उसको संभालने के लिए सुप्रिया वहीं रह गई है, मैंने ही उसको वहाँ छोड़ा है। तो उसके मरने की बात तुम जानती हो, किसने कहा? भानुसेन के मर जाने पर भी वह इतनी शांत कैसे रह गई थी? वह कर्ण की पत्नी थी, इस आन को वह इतनी दृढ़ता से निभा रही थी। सत्यसेन भैया ने और आप उसके अंत संस्कार में नहीं गए, यह बात भी सब जान गए हैं। शोकावेग से उसने सिर झुका लिया, अंशुक का छोर आंखों से लगाया। वृशाली, क्या कहा जाए, यह मुझे सूझ नहीं रहा था। मैं जानती हूँ महाराज, मुझे जैसी एक शुद्र सारथी कन्या से विवाह करके आपका जीवन व्यर्थ ही बीता, परंतु आप अपने माता पिता को कैसे भूल गए? उनके दर्शन करने की भी इच्छा आपको क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं आए राजनगर? किसने तुमसे कहा है कि मैं सारथी नहीं हूँ? राजमाता कुंती देवी ने। गंगा के किनारे आपने उनको जो वचन दिया है उसको लेकर कोई निश्चिंत होकर वापस जा सकता था, परंतु वे मुझसे भी मिली, केवल इसीलिए कि किस लिए? अब भी उनका मन आपके लिए व्याकुल है, इसलिए। पत्नी होने के कारण मैं भी आपसे कुछ पूछूं, इसलिए। महाराज, आपके प्रति उनके प्रेम की सीमा नहीं है, हमारे लिए नहीं सही, परंतु उनके लिए ही आप इस युद्ध को रोक दें। वैशाली, क्या तुम भी यही समझती हो कि तुम्हारे साथ विवाह करके मेरा जीवन व्यर्थ हो गया? नहीं, तुम्हारे लिए ही मैंने श्री कृष्ण से इनकार किया है, राजमाता को वापस भेजा है, पितामह की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की। मैं सारथी था और आज भी वही हूँ, विवश होकर नहीं अभी तो अभिमान से मैं सबसे कहूँगा कि मैं राधा माता और तात अधीरथ का पुत्र हूँ। और यदि तुम प्रातःकाल तक रुक जाओगी तो कल उदित होते हुए सूर्य भगवान से भी तुम्हारे सामने कह दूंगा कि क्या वृषाली जैसी पत्नी यदि मिल सके तो एक ही क्या 100 जन्मों में भी मैं सुतपुत्र ही रहना चाहूँगा, परंतु युद्ध के संबंध में कुछ मत कहो। अब वह रुक नहीं सकता। महाराज, इसी आशा को हृदय में संजो कर मैं विगत 15 दिनों से अब से राजमाता मिलकर आई हैं तभी से अपने फूटे घड़े के टुकड़े की अश्र पुष्पों से अर्चना कर रही हूँ। आप हमारे ही हैं, हमें मत छोड़ना। उसका गोल गौरवमणि मुख रूप श्वेत कमल अश्रु के तुषार कणों से टबडबा गया। आंखें बढ़कर उसने झुककर मेरे चरणों को स्पर्श किया। मेरा मन अभिमान प्रेम और अपनत्व की भाव लहरियों से आकंठ भर गया। वृशाली उठो, शांतनु महाराज ने मत्स्यगंधा को कभी छोड़ा था? यह बात तुमने आज तक नगर में किसी से भी सुनी है क्या? ययाति महाराज ने शर्मिष्ठा को ठुकराया था, यह बात कभी किसी ने कही है तुमसे? मैं उसी नगर में उसी राजभवन में बड़ा हुआ हूँ। पति पत्नी पूर्व जन्म से एकत्र संयुक्त की हुई दो दोहों की एक ही आत्मा जैसे होते हैं। समाज, धर्म, नीति कोई भी उनको अलग नहीं कर सकता। झूठी प्रतिष्ठा उस पवित्र बंधन को तोड़ नहीं सकती। उठो, शांतिपूर्वक नगर में जाओ और यदि दे सको तो उस घड़े के टुकड़े का आधा भाग सुप्रिया को भी दे देना। तुम सुज्ञ हो, ज्येष्ठ हो, उठो। उसकी भुजाएं पकड़कर थरथराते हुए हाथों से मैंने उसे उठाया। जैसे लता वृक्ष से लिपट जाती है वैसे ही वह एकदम कसकर मुझसे लिपट गई। उसकी घनी कुंचित केश राशि पर फिराता हुआ हाथ मेरा उससे कह रहा था, वैशाली, यदि जीवित रहा तो गंगा का किनारा है, जमुना की जल तरंगे हैं, नहीं तो स्वर्ग गंगा के तट पर फिर मिलेंगे। चलती हूँ मैं। हमारे विवाह में राजमाता कुंती देवी ने जो अंगुलित त्राण दिया था वह आप अपने अंशुक के छोर से निकालकर उसने मेरे दाएं हाथ के अंगूठे पर चढ़ा दिया। उसके शरीर पर वही सुनहले बिंदु वाली नीली अतलसी साड़ी थी। दोनों वस्तुएं उसने राजमाता की ही चुनी थी। जाओ और राधा माता से कहना कि कल सूर्योदय से पहले दर्शन करने, आशीर्वाद लेने भवन आऊंगा, मैंने कहा। अंशुक मुख्य चारों ओर लपेट कर शिविर के बुने हुए पटल को दूर हटाती हुई वह बाहर चली गई। बाहर खड़े सत्यसेन की आंखें आनंद से चमक उठी। यह मुझको मशाल के प्रकाश में दिखाई दे गया। एक हाथ में मशाल लेकर अत्यधिक तत्परता से वह रथनीड़ पर चढ़ गया। विशाली के रथ में बैठते ही उसने बलगांव को झटका दिया। प्रतीति का एक सूक्ष्म तार मेरे मन में कहीं झंकृत हो उठा। मैं पति होकर भी एक महत्वपूर्ण संस्कार विधि भूल गया था। सत्यसेन, ठहरो। शिविर के द्वार से हाथ उठाकर मैंने उसको रोका। जो विशाली को देना चाहिए था उसे तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। एक हाथ में तीक्ष्ण हल्का सर्प बाण लेकर मैं लगभग दौड़ता हुआ ही रथ के पास पहुंचा। वे दोनों ही चकित हो रहे थे। विशाली, तुम्हारा सौभाग्यालंकार रह ही गया। हाथ में लगा बाण बाएं अंगूठे में चुभोकर उस पर रक्त रंजित होने वाले बड़े से रक्त बिंदु को मैंने दाएं अंगूठे से उसके विशाल बाल पर लगा दिया। वह उस कुमकुम तिलक से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, शुचिभूत दिखाई दे रही थी। जो यह कहते हैं कि इंद्र को कवच कुंडल दान करके कर्ण ने भूल की, वे कैसे जान सकेंगे कि इस समय यदि देह पर अभेद कवच होता तो मैं वृषाली के बाल पर वैसा मंगल तिलक लगाने के सौभाग्य से वंचित रह जाता। सत्यसेन ने बलगांव को झटका दिया। घोड़ों के दौड़ते ही उसके हाथ की ज्योति फरफर करती हुई राजनगर की ओर दौड़ने लगी। दूरस्थ मोड़ की आड़ में जब तक वह अदृश्य न हो गई तब तक मैं एकटकी उसकी ओर देखता रहा। 22 कल प्रज्वलित होने वाले युद्ध में मेरे सामने एक ही मार्ग था, लड़ना, जो अपनी परंपरा के अनुरूप हो, जो कीर्तिदायक हो। कुरुओं के लिए लड़ना, कुरुओं की भूमि के लिए। किसने मेरी प्रवंचना की थी यह नहीं कहा जा सकता था। दुर्योधन ने इतने वर्षों के दीर्घ समय में क्या किया था यह मैं यदि किसी को बताता भी तो वह विश्वास न करता। शकुनी मामा, दुशासन महाराज, धृतराष्ट्र, किसी भी राजकीय व्यक्ति के लिए कल का यह महायुद्ध नहीं था। वह मुझे और केवल मुझे ही लड़ना था, जो उपलब्ध हो उन्हें शस्त्रों से, जो मिले उसी आयुध से। इसी में मेरा कर्णपन था, इसी में मेरी परंपरा का सम्मान था, कुरुओं का था, कुरुओं की भूमि का था। यह भूमि, इस भूमि के लिए न जाने कितनों ने कितने महान बलिदान किए हैं। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर रक्षण करने के लिए कितने नरवीरों ने, बालक बालिकाओं ने, स्त्री पुरुषों ने अपने जीवन कमल उस महान यज्ञ में साहस अर्पण किए हैं। आसपास के वातावरण में भ्रमण करने वाली उनकी आत्माओं के प्रति एकनिष्ठ रहने के लिए मुझे कल लड़ना था। हृदय में भावनाओं की जो आंधी चल रही थी उसको मैंने समय पर ही रोक दिया। नहीं तो क्या होता यह मैं भी नहीं बता पाता। अरण्य में मार्ग भ्रष्ट यात्री की तरह जो संभ्रम जीवन भर रहा था उसका कहीं न कहीं रुकना अत्यंत आवश्यक था। शांत भाव से मन को एक सूत्र में बांधकर मैं निद्राधीन हो गया।